ज़िक्रिया चौदवां बाब योमे खुदावंद।
देख, खुदावंद का वो दिन आता है जब तेरा माल लूटकर तेरे अंदर बांटा जाएगा और मैं तमाम अकवाम को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। शहर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी और निस्फ आबादी अस्सीरी में जाएगी, लेकिन उम्मत का बकिया शहर से मिटाया ना जाएगा। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था, और उस रोज उसके पांव कोहे जैतून पर टिकेंगे जो मशरक की तरफ यरूशलेम के मुकाबिल है, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा यूं के मशरक से मगरिब तक एक नहायत बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ तो शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। तब तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी असल तक होगी, और तुम वैसे ही भागोगे जैसे शाह यहूदा उज़िया के दिनों में जलजले से भागे थे।
तब खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी उसके साथ होंगे। उस रोज ना तारीकी होगी, ना सर्दी और ना बर्फ। वो दिन ऐसा होगा जैसा फक्त खुदावन जानता है। लैलो नहार ना होगा, शाम के वक्त भी रोशनी होगी। उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा मशरकी समुंदर और आधा मगरबी समुंदर की तरफ बहेगा। वो गर्मी सर्दी में जारी रहेगा और खुदावंद सारी दुनिया पर बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम एक ही होगा। तमाम मुल्क जाबे से लेकर नजबा के रमून तक मैदान होगा, लेकिन यरूशलेम बुलंद होगा, और बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक से होकर कोने के फाटक तक और हननियल के बुर्ज से लेकर बादशाह के कोहलू तक अपनी ही जगह में आबाद होगा और लोग उसमें सकूनत करेंगे। फिर लानत ना होगी बल्कि यरूशलेम आबाद और पुर अमन होगा। जो आफत खुदावन उन तमाम उम्मतों पर नाजिल करेगा जिन्होंने यरूशलेम के खिलाफ लश्कर कशी की, वो ये है कि खड़े खड़े उनका गोश्त बोसीदा हो जाएगा, उनकी आंखें चश्मखानों में गल जाएंगी, उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावन की तरफ से उनके दरमियान बड़ा इस्तराब होगा और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएंगे, और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ाई करेगा और गिर्दोपेश की तमाम अकवाम की दौलत यानी सोना चांदी और मलबूसात की कसरत जमा की जाएगी। اور جو آفت گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور گدھوں بلکہ لشکرگاہ کے تمام حیوانوں پر آئے گی وہ بھی اسی آفت کی مانند ہوگی۔
اور یروشلم سے لڑنے والی تمام قوموں میں سے جو بچ رہیں گے وہ سب کے سب سال بہ سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے آیا کریں گے، اور قبائل زمین میں سے ان پر اس سال می نہ برسا کرے گا جس سال وہ بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے کے لیے یروشلم نہیں آیا کریں گے، اور اگر مصر کی نسل نہ آئے اور حاضر نہ ہو تو اس پر وہی آفت پڑے گی جو خداوند ان قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی۔ مصر کے گناہ کی سزا بلکہ ان تمام قوموں کے گناہ کی سزا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی یہی ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا، خداوند کے لیے مخصوص، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے سامنے کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی۔ بلکہ یروشلم اور یہودا میں ہر ایک دیگ رب الافواج کے لیے مخصوص ہوگی، اور سب قربانی گزرانے والے آ کر انہیں لیں گے اور ان میں پکائیں گے، اور اس روز رب الافواج کے گھر میں کوئی تاجر نہ پایا جائے گا۔